मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों नमस्कार। 17 जून 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल अपने सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एकेडमी की जो अक्टूबर में 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं, उसके लिए कल 14 नौजवान साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं इन सभी 14 नौजवान साथियों का भी इसी क्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इन दोस्तों के नाम हैं रोहित कुमार, आप चेन्नई से हैं और चेन्नई से ही हैं ललन कुमार साहनी। प्रथम वशिष्ठ, आप न्यू दिल्ली से हैं। गुलरेज सहारनपुर से, दीपिका सैनी देहरादून से, आलोक कुमार यादव इलाहाबाद से, रहमान सहारनपुर से, निपुण सारडा दिल्ली से, शुभम गुप्ता इलाहाबाद से, दीपक कुमार गाजीपुर से, विजय कुमार तिवारी कानपुर से, पवन कुमार सरोज इलाहाबाद से, अमरदीप कुमार सिंह दिल्ली से और नितिन कुमार तिवारी उन्नाव उत्तर प्रदेश से। तो रोहित, ललन, प्रथम, गुलरेज, दीपिका, आलोक, रहमान, निपुण, शुभम, दीपक, विजय, पवन, अमरदीप और नितिन, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब धीरे धीरे हम बहुत उसके नजदीक आते जा रहे हैं जब एक दूसरे के आमने सामने बैठकर हम 15 दिनों तक लगातार लगभग 95 घंटे, यानी कि 95 घंटे ही लगातार नहीं, 15 दिनों में 95 घंटे तक बातचीत करेंगे। सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, कैसे हम अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करें, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, किस तरह से अपने पूरे के पूरे बिहेवियर पैटर्न में परिवर्तन लाएं और सबसे बड़ी बात है किस तरीके से हम अपने भाव और विचारों में समन्वय स्थापित करके अपने आप को न केवल एक बेहतर सफलता के लिए ही तैयार कर सकें बल्कि बेहतर जिंदगी जीने के लिए भी तैयार कर सकें। लेकिन मित्रों, वो दिन जब आएगा तब आएगा और एक दिन आएगा ही, लेकिन इस बात की मेरी सलाह की बिल्कुल भी उपेक्षा मत कीजिएगा कि प्लीज जो डेली ऑडियो गाइडेंस है उसे सुनना बंद न करें। मित्रों, किसी भी कीमत पर बंद न करें। हो सकता है कि आपके पास न सुन पाने के सैकड़ों कारण हों और आपके कारण सही हो सकते हैं, सच ही होंगे, उससे मैं इनकार नहीं करता। मित्रों, न करने के सैकड़ों कारण होते हैं लेकिन करने के लिए तो सिर्फ एक ही कारण पर्याप्त होता है। तो क्यों न हम बजाय उसके कि 100 कारण अपने दिमाग में रखते हैं, केवल एक ही कारण अपने दिमाग में रखें और वह यह कि नहीं, मुझे इसे करना है। मित्रों, मुझे इसे करना है और जिस एक कारण की बात मैंने अभी कही, आप लोगों को सुनने में ये थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है। कह सकते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कि सर दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत लोग होते हैं, हम भी उपदेश दे सकते हैं, लेकिन पता तो तब चलता है जब उसे करना पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पता तो तब चलता है जब उसे करना पड़ता है। लेकिन मित्रों, जहां तक मेरे अपने अनुभव का सवाल है, डेफिनेटली मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि मैंने ऐसा किया है, इसीलिए मुझे विशेष रूप से यह लगता है कि ऐसा किया भी जा सकता है। दोस्तों, अभी यूएस में रह करके लगातार 3 सप्ताह तक डेली ऑडियो गाइडेंस की जिस कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखा गया, उसके बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों को बताई थी और खासकर मेरा मकसद ये था कि आप चुनौतियों को जान सकें और कहीं ना कहीं आपको इस बात का भी पता लग सके कि अगर ऐसी चुनौतियां आपके सामने आती हैं तो उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। निश्चित रूप से अब आप लोगों के उस पर फीडबैक आने शुरू हो गए हैं, मुझे बहुत से मेल मिले हैं जिसमें आप लोगों ने उस कंटिन्यूटी की तारीफ की है और खासकर आज मैं राजकुमार लड्डा जी की प्रशंसा करना चाहूंगा जो फरीदाबाद से हैं और उनकी बेटी जो प्रीति लड्डा है फर्स्ट बैच की हमारी स्टूडेंट भी रही हैं और मुझसे उनकी बातचीत भी होती रहती है, वो मिलने भी आए थे वर्ल्ड बुक फेयर में, उन्होंने मेरे इस जज्बे को सलाम किया है, और सच पूछे तो मेरे इस जज्बे को सलाम करने के जवाब में मैं खासकर आप लोगों की उस भावना को सलाम करता हूं जो आप अपने ईमेल के जरिए मेरे प्रति व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि मेरी यही ऊर्जा है। और सच पूछे तो करते रहें, पहले से भी बेहतर करें, ये जो भावना पैदा होती है वो निश्चित रूप से आप लोगों के इस प्रतिदान से ही पैदा होती है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि इसी क्रम में आज मुझे अपने कुछ उन अनुभवों को शेयर करना चाहिए जो खासकर स्टूडेंट की लाइफ में, या जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था उस समय मैंने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया, क्योंकि अभी भी एक दो मेल मेरे पास ऐसे हैं, ज्यादा ही हैं, कि मैं 15 दिनों से आपके इसको नहीं सुन पाया, या मैं फलाने फलाने की वजह से हो नहीं कर पाया, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। मित्रों, मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? देखिए, माफी तो प्रकृति है, समाज है और सफलता है। मेरे माफ कर देने से भी जो चीज आपकी मिस हो गई है, जो चूक हो गई है, उसकी भरपाई नहीं होगी। तो इसलिए मुझसे माफी मांगने का बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उठता है। सवाल तो केवल यह है कि आप उसे कितना निभा पाते हैं, और अगर आप निभाएंगे तो उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा, और अगर आप मिस करेंगे तो उसका भी प्रतिफल आपको ही भुगतना होगा। तो दोस्तों, मैं अपनी छोटे छोटे चीजें आपसे आज शेयर करना चाह रहा हूं। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं अपनी बात आप पर इम्पोज कर रहा हूं या अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहा हूं, नॉट एट ऑल। अगर आप मेरी पहली जो टाइम मैनेजमेंट पर किताब आई थी, समय आपकी मुट्ठी में, जो बेहद पॉपुलर हुई और जिसे उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी बेहद पसंद किया और उन्होंने उसके बारे में पत्र भी लिखा था जो मेरे पास आज भी मौजूद है, जो डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए था। उसमें भी मैंने केवल अपने अनुभव के आधार पर ही टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांत निकाले थे, और उन्हीं में से कुछ ऐसे सिद्धांत मैं, ऐसे तरीके, सिद्धांत तो नहीं कहना चाहिए, कुछ ऐसे तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो मैं उपायों के रूप में लाता था। और हो सकता है कि मेरे ये जो छोटे छोटे उपाय हैं आपको भी कुछ उपाय सुझा सकें। एक बात के लिए मैं थोड़ी सी माफी मांगना चाहूंगा मित्रों की, आज मेरी आवाज थोड़ी सी आपको डिम सी लग रही होगी, या हो सकता है कि थोड़ा सा स्लिप भी करे, क्योंकि पता नहीं कल क्या है, दोपहर के बाद से हल्का सा फीवर है, हरारत है। मैं भी टैबलेट लेकर के आप लोगों से बात कर रहा हूं और गला भी खराब है, किसी तरह से कंट्रोल कर रहा हूं मैं, चूंकि इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना ही है, तो थोड़ा सा उसके लिए आप मुझे मार्जिन देकर के चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं रहा, गांव के स्कूल के बाद पढ़ाई मेरी एज ए प्राइवेट स्टूडेंट रही है, और उसमें भी मैं बहुत लंबे समय तक गांव में रहा। दुकान करना, घर की आर्थिक स्थिति को संभालना, देखना करना, ये सारी चीजें थी, और जो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके लिए, इसको कोई शहीदाना अंदाज से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हालत मुझसे भी कई गुना ज्यादा बदतर होती है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इस पृष्ठभूमि की चर्चा केवल इसलिए की कि क्यों मुझे ऐसा करना पड़ा, ताकि आप उसे समझ सकें। तो मित्रों, मैं ये करता ये था कि सुबह तो चूंकि मुझे समय नहीं मिल पाता था, तो उस समय हम लोग गांव में रहते थे और गांव में उस समय बिजली नहीं थी। मैं ये बात आपको बता रहा हूं लगभग 1970-71 के आसपास की। तो मैं रात में लालटेन साफ करके अपने सिरहाने रख देता था, और गांव में तो जल्दी ही सो जाते हैं, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है लोग 9 बजे तक सो जाते थे, और फिर 3 बजे मैं उठता था, अपनी लालटेन जलाता था और सिरहाने लालटेन जलती रहती थी, और मैं लेटे लेटे ही पढ़ता था, मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि पढ़ना है तो पढ़ना है। लगभग 2 घंटे में पढ़ाई करता था 3 से 5 बजे तक, और इसके बाद फिर मैं सो जाता था और 1 घंटे के बाद उठता था, ताकि ये दिमाग में रहे कि नहीं नहीं मैंने रात भर की नींद पूरी ली है। एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक इलाज जैसा था, और इसके बाद फिर दिन भर काम में लग जाते थे। तो कम से कम डेली 2 घंटे की ये सॉलिड पढ़ाई हो जाती थी। मित्रों, इसके बाद होता यह था कि मैं मॉर्निंग वॉक की मेरी उस समय से आदत है जो आज तक ईश्वर की कृपा से बनी हुई, फिर जब मैं मॉर्निंग वॉक में जाता था तो उसी दिन जो कुछ भी सुबह उठकर मैं पढ़ा हुआ होता था उसको मैं दोहराता था। तो मॉर्निंग वॉक मेरी लगभग 45 मिनट्स की होती ही थी, तो ये 45 मिनट्स में मेरी फिर से वो सबका सब रिविजन हो जाता था जो मैं पढ़ चुका होता था। और यहां तक कि अगर मैंने पिछले दिन का या उससे भी पिछले दिन का पढ़ा हुआ मुझे लग रहा है कि नहीं मैं भूल ना जाऊं, तो मैं उसे रिवाइज कर लेता था। कुल मिलाकर के यह है कि वो मेरा मॉर्निंग वॉक ही नहीं होता था बल्कि मॉर्निंग मनन भी हो जाता था और मैं पढ़ता था। आज भी मेरी आदत है कि जब मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूं तो मुझे आज मोटिवेशन में आपसे क्या चर्चा करनी है, क्या प्लान करना है, वो सारी की सारी, या कौन सा आर्ट की लिखना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स देने हैं, वो सारा का सारा मेरा मॉर्निंग वॉक में वो सारा कवर हो जाता है। तो मॉर्निंग वॉक तो एक तरह से मेरा वरदान ही है। नहीं तो जब मैं दुकान में बैठता था तो हमेशा मेरे बगल में एक किताब होती थी और उस किताब में एक बुक मार्क लगा हुआ होता था। बुक मार्क आप समझते हैं कि जहां भी आपने पढ़ना छोड़ा है वहां आप लगा दीजिए ताकि फिर से आप वहीं उसी पेज को देख सके। यदि ग्राहक होते थे तो मैं उनसे बात करता था और जैसे ही ग्राहक चले जाते थे मैं फट से उस किताब को खोलता था और पढ़ने लगता था। मित्रों, मैंने कभी ये प्लान नहीं किया कि मुझे एक घंटे का समय मिलेगा या आधे घंटे का समय मिलेगा तभी मैं पढ़ूंगा। मुझे इस बात में विश्वास नहीं था कि मुझे बहुत बड़ा गुलाब का फूल चाहिए। मुझे इस बात पर ज्यादा यकीन था कि मुझे अगर छोटे छोटे फूल भी मिलेंगे तो मैं उन सबको एक धागे में मिलकर के एक बड़े माला के रूप में तब्दील कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न मेरे पास उतना बड़ा समय का टुकड़ा रहेगा और न मैं पढ़ पाऊंगा। तो फिर मैं क्या करूं? तो मेरे लिए समय के छोटे छोटे टुकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ज्यादा मूल्यवान थे, बजाय इसके कि मैं किसी समय के बड़े टुकड़े की प्रतीक्षा में जो अभी छोटे छोटे समय हैं उनको भी अपने हाथ से जाने दूं, नष्ट हो जाने दूं। दोस्तों, मतलब ये बात आपको सुनकर बड़ी विचित्र सी लगेगी कि मैं जब भी कभी बीमार पड़ता था तो मैं अफसोस नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बीमार पड़ने के बाद तो फिर आपके पास ये सबसे बड़ा सहारा होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर सकें। गांव में उस समय लोग बुखार भी बहुत आता था, मतलब कभी कोई साल मुझे याद नहीं आ रहा है जबकि हम 3-4-5 दिन के लिए बुखार ना आता हो। बुखार आता था तो आप लेटे रहिए, ठीक है बुखार है अपना काम करता रहेगा, आप दवाई लेते रहिए, लेकिन कम से कम लेटे लेटे तो आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए बीमारी एक तरह से बहुत राहत देने वाली होती थी और उसमें मैं छक्के लगाता था कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो उतनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लो। हालांकि इस बात पर आप लोग थोड़ा सा हंसेंगे और व्यवहारिक भी मानेंगे, लेकिन मित्रों मेरे साथ ऐसा था तो मैं क्या करूं, मैं आपसे वही शेयर कर सकता हूं जो मैं करता रहा हूं। फिर होता क्या था दोस्तों कि नो डाउट कि जो इंटरटेनमेंट का टाइम होता था उसमें तो मुझे कटौती करनी ही पड़ती थी। फिल्में देखने में समय खराब करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। कोई बहुत पॉपुलर फिल्म आ गई, शहर में गए हैं तो देख लिए, अदरवाइज कोई सवाल ही नहीं था। हम लोगों के समय में एक अच्छी बात यह थी कि उसमें टीवी और टीवी चैनल्स नहीं थे तो वहां तो समय खराब होता ही नहीं था। मनोरंजन के कोई बहुत ज्यादा साधन भी नहीं थे तो वो समय हम लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा समय की बचत का काम करता था। फिर मैंने टाइम को कुछ क्लब किया था दोस्तों, जैसे सुबह मैं हमेशा 8 बजे ही दाढ़ी बनाता था। मतलब जब आप शेविंग कर रहे हैं तो उस समय आप बड़े आराम से 8 से 8:15 की न्यूज को, 8:10 की न्यूज को सुन सकते हैं। तो दोनों काम हो जाते थे, शेविंग का भी काम हो जाता था और न्यूज सुनने का भी काम हो जाता था। और ठीक यही स्थिति रात में होती थी। रात में मैं इंतजार करता रहता था कि 8:45 बजे और फिर मैं खाना खाऊं। 8:45 बजते थे तो ट्रांजिस्टर खोलता था, उसमें न्यूज आनी शुरू होती थी और मैं खाना खाना शुरू करता था। तो 15 मिनट में ये दोनों काम निपट जाते थे। तो इस तरह से मैंने, आप कह लीजिए कि एक ही समय का दोहरा इस्तेमाल किया। इसके बाद होता यह था फ्रेंड कि जब भी यात्रा पर जाना होता था, जैसे गांव से शहर जाना होता था, तो गांव से पहले तो शहर कुछ किलोमीटर तक हम साइकिल चला के जाना पड़ता था, तो उसमें तो आप नहीं पढ़ सकते थे, साइकिल गांव उस जगह पर छोड़ते थे फिर बस में जाते थे। और किताब मेरे हमेशा थैले में, उस समय बैग का जमाना नहीं था, वो थैले में पड़ी रहती थी। और अगर मुझे बैठने की सीट मिल गई तब तो फिर तो सोने में सुहागा। इत्मीनान से लगभग 1.5 घंटे की वो जर्नी होती थी, 1.5 घंटे तक पढ़ाई हो जाती थी। और अगर बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं तलाश करता था कि किसी तरह से कोने में बस में खड़े होने की ऐसी जगह मिल जाए जहां धक्का मुक्की से बचा जा सके और सहारा मिल जाए उसकी दीवार का, और मैं वहां जाकर के टिक कर खड़ा हो जाता था और फिर आराम से किताब खोलकर अपनी पढ़ाई करता रहता था। तो मित्रों, इस तरह से जो जर्नी का टाइम होता था उसकी भी कोशिश ये होती थी, उसमें भी कोशिश ये होती थी कि किस तरह से उस टाइम का इस्तेमाल किया जाए। तो मित्रों, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि मैं बड़ा फुटकर किस्म का व्यापारी रहा हूं। बहुत छोटे छोटी 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 चीजों की अहमियत इकट्ठे कर करके मैंने थोड़े से अपने, मैं सिक्कों का मालिक रहा हूं आप कह लीजिए, कि मैं सिक्के जुटाने में विश्वास करता था। बड़े नोट की ना तो काबिलियत थी और सच पूछिए तो अवसर भी नहीं था। तो छोटे छोटे समय के टुकड़ों का इस्तेमाल मैंने करना सीखा दोस्तों, और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से मैं अपना मकान बना पाया, जो भी छोटा मोटा मकान बन सका। तो मित्रों, मैंने ये बात आपसे शेयर की है और इसके सिद्धांत के रूप में मैं एक चीज आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये कि आप सुबह प्लान कर लीजिए कि मुझे इतना कोर्स करना है, इतनी पढ़ाई मुझे करनी है, इसमें ढिलाई मत दीजिए। ये मुझे करनी है, और थोड़ा सा दिमाग में इस बात का भी प्लान कर लीजिए कि आज दिन भर का जो समय है उसमें कौन कौन सा समय आपको मिल पाएगा, और फिर उनको पकड़िए। अगर आप ये सोचेंगे कि मिलेगा तो कर लेंगे, तब फिर आप पक्का मान करके चलिए कि आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने शुरू में सोच लिया कि मुझे तो ये करना ही करना है, चाहे मैं जैसे भी करूं, चाहे मुझे अपनी दूसरी चीजों में ही कटौती क्यों न करनी पड़े, लेकिन ये इतना काम मुझे करना है, इतनी पढ़ाई मुझे करनी है, तो फिर आप देखेंगे कि एक विचित्र सी चीज होगी कि जिसको हम कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन काम कर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और आप उसको कर ले जाएंगे। क्योंकि फिर तो आपकी आंखें तलाश करेंगी ना, उन समय के छोटे छोटे टुकड़ों को तलाशेंगी कि भैया कहां से मिले और कहां से मैं उसको ग्रैब कर लूं, एकदम पकड़ लूं, और फिर आपको मजा आने लगेगा। और दोस्तों सच पूछे कि जब आप कोई फैसला करते हैं कि ये काम मुझे करना है, और जब वो काम हो जाता है, तो उस काम के हो जाने की जो आनंद की अनुभूति होती है वो मैं ही क्या, आप लोगों ने भी उसका सुख तो लिया ही होगा, उसका अनुभव आप लोगों के पास भी होगा। और यदि रोज थोड़े सेकंड के लिए ही, मतलब करीब 10 सेकंड के लिए भी अगर हमें उस आनंद की अनुभूति हो जाए, तो मैं समझता हूं कि वो लगभग लगभग 2 घंटे के योगा के बराबर तो हो जाएगा, जब आनंद की अनुभूति करके हमारे शरीर के रोएं खड़े हो जाएं और हमारा अंतर मन बिल्कुल उल्लास से खिलखिला पड़े। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और इसका बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है। तो मित्रों ये मोटिवेशन वाला हिस्सा था, जिसमें मैंने कुछ अपने आप लोगों से उपाय शेयर किए हैं जो मैं करता रहा हूं, और विश्वास कीजिए कि इसमें कोई भी सैद्धांतिक बात नहीं है, जो मैं करता रहा हूं सिर्फ उन्हीं की चर्चा मैंने आपसे की है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर, और मुझे ये कहते हुए बड़ा विचित्र सा ही अनुभव हो रहा है कि कल के AIR न्यूज में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिनकी चर्चा मैं आपसे विस्तार के साथ यहां कर सकूं, और ये जो चर्चा है वो डेफिनेटली सिविल सर्विस की तैयारी के संदर्भ में है। एक दो चीजें, छोटी छोटी चीजें थी, बट नेचुरल है कि जब हम न्यूज सुनते हैं तो पिछली चीजें भी उससे जुड़ जाती हैं, बहुत सी तो आज की जो न्यूज होगी वो पिछले ही जो न्यूज रही है उन्हीं का एक्सटेंशन होती है, उन्हीं का क्रम होती है। ललित मोदी जी के बारे में जो खबर थी आप लोग सुन ही रहे हैं, कई दिनों से यह मामला चल रहा है इसीलिए यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। एक खबर जो थी वो डायरेक्ट तो आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से कि जो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसकी जो खंडपीठ है, शायद लखनऊ की खंडपीठ है, वहां आपको पता है कि एक पत्रकार की हत्या हुई है, डेथ हुई है, और उसमें एक मंत्री को आरोपी माना जा रहा है, उनके खिलाफ जांच चल रही है। जो पत्रकार का जो परिवार है वो CBI जांच की मांग कर रहा है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसने हस्तक्षेप करके और सरकार से कहा है कि वो अब तक की जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। अब ये जो हिस्सा है मित्रों, देखिए एक न्यायिक सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, और आप देखेंगे कि सिविल सर्विस में भी इस पर पूछे जाते हैं प्रश्न, और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और अभी सच पूछे तो एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न भी ये बना हुआ है, जब से पब्लिक लिटिगेशन एक्ट पारित हुआ है जनहित याचिकाएं दायर होने लगी हैं, और उनको आधार बना करके जो न्यायालय हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही दायर हो सकती हैं, वो जब से निर्णय देने लगे हैं, फैसले देने लगे हैं, तब से एक प्रशासन अपने आप को बड़ी विचित्र स्थिति में पा रहा है। प्रशासन को लगता है कि नहीं ये हमारा काम है, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, न्यायालय को लगता है कि भाई ये तो जनहित याचिका में दायर की गई है, इससे बहुत से लोगों के जीवन का प्रश्न जुड़ा हुआ है, और ये हम हस्तक्षेप न करें, यदि आप इस समस्या को खुद सॉल्व कर लें। यदि कहीं मान लीजिए कि आपके शहर में दुनिया भर का कचरों के ढेर लगे हुए हैं और उन कचरों से बीमारियां फैल रही हैं, तो और जनहित याचिका उस कचरे के खिलाफ दायर हो जाती है और न्यायालय ये आदेश दे देती है कि भैया इन कचरों को हटाया जाए, तब प्रशासन कहेगा कि ये तो हमारा काम था, अगर आपका काम था तो आप कर लेते, न्यायालय ये कहती है, हमको कहने की जरूरत ही क्यों पड़ती, और चूंकि उसमें लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, लोगों की सुरक्षा जुड़ी हुई है, तो हमें कहना पड़ रहा है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी के बीच की जो टसल है इसी को हम न्यायिक सक्रियता का इनफैक्ट नाम देते हैं। इसमें भी आपको थोड़ी सी झलक मिल सकती है जिस घटना का अभी मैंने आपसे उल्लेख किया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अब होता क्या है मित्रों की, जैसे मान लीजिए कि आप UPSC में बैठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठ रहे थे और वहां अगर कोई प्रश्न इस तरह का पूछ लिया गया एग्जाम में, तो ज्यादा अच्छा है कि आप किसी दूसरे स्टेट की बात करें, अपने स्टेट की बात करें, तो उसमें आप इस घटना की चर्चा कर दें। और यदि आप ऑल इंडिया सर्विसेज में बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर सुप्रीम कोर्ट को लें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी चर्चा ऑल इंडिया लेवल पर होती है। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप हाई कोर्ट की चर्चा न करें। अगर हाई कोर्ट की कोई घटना बहुत ही चर्चा में आ गई है तो डेफिनेटली आप उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन एक व्यावहारिक नीति के तहत हम ये बात कह सकते हैं कि इस तरीके का भी रुख हम अख्तियार कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी खबर यह भी थी कि निर्यात में कमी आई है। देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और ये प्रॉब्लम केवल भारत की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है। पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा है, इधर तेल की कीमतें बेहद कम हो रही हैं, डिमांड कम हो रही है, और फिर भारत से लगातार जो डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत घटती जा रही है, तो ये सारी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से निर्यात में कमी आई है। तो मैं इस यहां पर केवल एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहूंगा कि खासकर निर्यात को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, ये आप चाहें तो इकोनॉमिक्स की किताब से थोड़ा देख सकते हैं। इसी बहाने इसकी तैयारी हो जाएगी। सीधे सीधे तो सिविल सर्विस में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि निर्यात में किन कारणों से कमी आती है, लेकिन फिर भी एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो है, खासकर अर्थशास्त्र का जो व्यावहारिक पक्ष है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो हो ही जाती है। तो मित्रों, ऑल इंडिया न्यूज में जो था जिसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते थे, वो कुल मिलाकर इतनी ही बातें थी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर पर। आज के न्यूज़पेपर में कुछ अच्छी और इम्पॉर्टेंट क्लिपिंग्स हैं जिन्हें हम सिविल सर्विस के लिए महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लिपिंग है जो मैं डाल भी रहा हूं इकोनॉमिक टाइम्स की क्लिपिंग से, वो खासकर मैग्ना कार्टा पर है। दूसरे अखबारों में, हिंदी के अखबारों में अभी मुझे इसके बारे में क्लिपिंग्स नहीं मिली हैं, और हो सकता है कि वो आगे आए। ये जो मैग्ना कार्टा है उसकी जो 800वीं जो जयंती है, आप कह लीजिए एनिवर्सरी, वो 15 जून को हो गई है। 15 जून को ऑलरेडी मनाई जा चुकी है, क्योंकि आज 17 जून है। ये जो मैग्ना कार्टा है फ्रेंड्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दो कारण हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि आज से एग्जैक्ट 800 साल पहले, सन आपको मालूम होना चाहिए 1215, सन 1215 में पहली बार एक तरह से मैग्ना कार्टा के माध्यम से पूरी की पूरी दुनिया में लोकतंत्र की नींव पड़ी, आप कह सकते हैं। हुआ यह था कि इंग्लैंड के जो राजा थे, किंग जॉन, इंग्लैंड के राजा का नाम था किंग जॉन, कुछ वहां के जो सामंत थे वे इकट्ठे हुए और राजा के खिलाफ उन्होंने एक ग्रुप बनाया, और इसके बाद वो फिर किंग के पास गए और उन्होंने अपनी बातें रखी, और जब उन्होंने अपनी बातें रखी तो दोनों के बीच में बातचीत हुई और उसके तहत फिर मैग्ना कार्टा पर साइन हुए, हस्ताक्षर हुए। और सच पूछे तो वो जो हस्ताक्षर थे उसका आधार ये था कि जो राजा है उसकी जो सत्ता है वो सीमित होगी और वो एक तरह से प्रजा के हित के लिए, प्रजा की इच्छा के अनुसार काम करेगा। वहां से उसकी नींव पड़ी मैग्ना कार्टा। फर्स्ट पॉइंट तो ये है फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोकतंत्र की नींव है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट ये बात आपके लिए क्यों हो रही है, वो ये कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है आपके सिविल सर्विस का एक पार्ट है। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ी चीज है। आप दहशत में आ सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री जनरल नॉलेज का पार्ट है और हम उसमें से क्या क्या पढ़ें। मित्रों, उसमें दहशत में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि करंट अफेयर्स पर आपकी ठीक निगाह है, यदि आप पूरी तरह से जो हमारे अनसॉल्व्ड पेपर हैं उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या तैयारी करनी है ये जानना आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। अब चूंकि मैग्ना कार्टा की 800वीं जयंती जून 2015 में है और आपका जो एग्जाम मेंस का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा, और अगर हम प्री को माने तो वो अगस्त में होगा, तो ऐसी स्थिति में यदि मैग्ना कार्टा पर प्री से भी प्री में भी क्वेश्चन आ जाए और मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा आपको घबराहट होनी चाहिए और इसे आप यूपीएससी के द्वारा आप पर किया गया अन्याय या अत्याचार मानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसके साथ मैं और भी आपसे शेयर करना चाहूंगा, और चूंकि ये जो ऑडियो गाइडेंस है ये कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग का भी गाइडेंस है, तो जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए फ्रेंड्स वो केवल अभी जो हमारे सामने है उसी पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके बियॉन्ड और क्या हो सकता है उस पर भी हमारी निगाह की पहुंच होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम मैग्ना कार्टा को, जैसे क्या मतलब मानते हैं का सवाल नहीं, मैग्ना कार्टा यदि डेमोक्रेसी की नींव है तो ठीक इसी तरह से एक रिवोल्यूशन हुआ है और वो रिवोल्यूशन है फ्रेंच रिवोल्यूशन, और फ्रेंच रिवोल्यूशन को आप एक तरीके से जो हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी नींव मान सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम कहने का मतलब है कि जिस तरीके से अब काम हो रहे हैं और फ्रेंच रिवोल्यूशन ने जो भाईचारे सद्भाव का जो संदेश, विश्व बंधुत्व का जो संदेश पूरी दुनिया को दिया, उसके बाद से पूरी दुनिया में तेजी से परिवर्तन आने शुरू हो गए। तो अगर मैग्ना कार्टा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 800 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसी से जुड़ी हुई जो दूसरी घटना विश्व इतिहास में हुई है वह फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि एक सतर्क स्टूडेंट के रूप में फिर आपकी कोशिश यह भी होनी चाहिए कि यदि मुझे मैग्ना कार्टा के बारे में थोड़ी सी तैयारी करनी है तो बेहतर है कि मैं थोड़े से फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में भी तैयारी कर लूं। एक बात मैं यहां आपको थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जब भी आप इतिहास की ऐसी घटनाओं पर तैयारी करते हैं तो आप घटनाओं की चर्चाओं पर मत जाइए कि फ्रेंच रिवोल्यूशन क्यों हुआ, फिर कौन कौन किस किस तरफ से क्या क्या उसने कहा, कैसे घटनाएं घटी, नॉट एट ऑल। उसकी फिलॉसफी पर जाइए कि फ्रेंच रिवोल्यूशन क्यों हुआ, तो उसकी फिलॉसफी देखिए। फिलॉसफी यह था कि जनता का अल्टीमेट एक्सप्लॉयटेशन, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जनता के पास खाने को अनाज नहीं है, भूखे है भूखी है जनता, तो क्या करे। तो वहां से आपको फिलॉसफी मिलेगी, उस घटना की फिलॉसफी मिलेगी, और फिर इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट को भी फिलॉसफी के रूप में लीजिए। अब जो सिविल सर्विस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें फिर आपको यह लिखने की जरूरत नहीं होगी कि राजा को गद्दी से हटा दिया गया, रानी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, अगर ऐसा कुछ किया गया तो फलाना फलाना ये किया गया, प्रधानमंत्री को हटा दिया गया, सत्ता पर इसका अधिकार हो गया, इसके बाद इस तरह से गणतंत्र बना, टैक्सेस कम कर दिए गए, ये इंपैक्ट नहीं है, ये प्रभाव नहीं है। प्रभाव यह होगा कि किस तरह से फ्रेंच रिवोल्यूशन ने फिर अपने आने वाले वक्त को प्रभावित किया, तो ये फिर से एक तरह से इंपैक्ट की फिलॉसफी है। तो सिविल सर्विस की तैयारी करते समय फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ये जो फिलॉसफी वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं इसको थोड़ा एनलार्ज करके देखना होगा, थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा, तब सही मायने में आप सिविल सर्विस में जो बेसिक्स के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सही सही उत्तर देने की स्थिति में हो सकेंगे। तो मित्रों, ये जो मैग्ना कार्टा पर जो एडिटोरियल कमेंट है इकोनॉमिक टाइम्स का, ये मैं नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप देख लेंगे। दोस्तों, दूसरी का जो एडिटोरियल कमेंट है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है और ये खासकर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लेकर के है जो उन्होंने अभी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को कैंसिल किया। इसमें इन्होंने दो प्रश्न उठाए, इसीलिए मैंने इस एडिटोरियल को चुना भी है। पहला उन्होंने दिया है कि जो प्री मेडिकल टेस्ट जो होना था इसमें जो सिलेक्शन का परसेंटेज था, जो लड़के सेलेक्ट होते, 6 लाख लड़के लगभग बैठे थे और जितनों का 3000 का लगभग सीट थी, उसमें से जो परसेंटेज आ रहा है वो आ रहा 0.6%, केवल इतने लोग सेलेक्ट होने थे। तो बताया कि ये जो कट थ्रोट जो कॉम्पिटिशन है ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो अनियमितताएं होती हैं उसके लिए थोड़ी बहुत जिम्मेदार भी होती है। इसमें इन्होंने जो सजेशंस दिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सजेशंस उन्होंने इंपॉर्टेंट दिए, ये दिए कि स्टूडेंट्स की नीड है, स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और हमारे देश की भी नीड है कि डॉक्टर की जरूरत है, तो फिर हम क्यों नहीं करते कि ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक संतुलन स्थापित करें। जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 लाख लड़कों ने अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, वहां उतनी सीट नहीं है, और अगर लड़के चाह रहे हैं कि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिले, एक स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिले, तो वो गलत नहीं चाह रहे हैं, उसमें से थोड़े से लोगों को मिल पाएगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस स्थापित करें। और इसमें फिर उन्होंने सजेशन दिया कि जो विश्व के जो दूसरी संस्थाएं हैं उनको अपने यहां अलाउ करें, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज से संबंधित जो बिल पड़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी पारित करें ताकि स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ये उन्होंने सजेशंस दिए हैं। तो चूंकि इसमें मौलिक सजेशंस थे इसलिए फिर मैंने इस एडिटोरियल का चयन किया है। इंग्लिश में है, हिंदी में वो क्या कहना चाहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। मित्रों, दो एडिटोरियल कमेंट खासकर नूडल्स जो को लेकर के हैं कि किस तरह से इस पर सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है। और अभी जो इसका प्राधिकरण है उसने कहा है राज्यों से कि वो केवल उन्हीं की जांच न करें जो पंजीकृत हैं, बल्कि उन खाद्य पदार्थों की भी जांच करें जो पंजीकृत नहीं है। ये हिंदी में है, ये आप देख लीजिएगा। जो मेन थ्रस्ट था जिसके कारण मैंने इन एडिटोरियल कमेंट्स को चुना है वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। चार देशों के बीच में जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर भी टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कमेंट है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। बिल्कुल वही बात इस एडिटोरियल कमेंट में दोहराई गई है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे जरूर। ललित मोदी के बारे में जनसत्ता का एडिटोरियल कमेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। और दो एक जो बहुत अच्छा आर्टिकल है फ्रेंड्स, वो है इंडियन रेलवे के ऊपर। और एक खुशी की बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में यह आर्टिकल लिखा है विवेक देव राय ने, जो इससे जो कमेटी थी उसके जो हेड थे विवेक देव राय, और मुझे लगता है इनका नाम आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। बात लगभग वही है जिसकी चर्चा हम लोग काफी पहले से कर चुके हैं, काफी बार कर चुके हैं, इसीलिए मैं चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आर्टिकल से आप इसे प्लीज जरूर पढ़िएगा, कुछ बहुत अच्छे तथ्य आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ मिलेंगे उसमें। आपको आपकी जो लेखन शैली होगी या जो उत्तर देने की जो बड़ी क्षमता होगी वो बहुत प्रभावशाली हो सकती है। और मैं चाहूंगा कि इसे स्टूडेंट अपने पास रखे भी, क्योंकि रेलवे रिफॉर्म मुझे लगता है कि इस बार के सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक हो सकता है। और एक है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में, खासकर म्यांमार में जो अभी घटना हुई है, जो भारतीय सेना ने वहां आतंकवादी कैंप जो पकड़े हैं उसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस का है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। दोस्तों अब अंतिम चरण पर ये मेल का चरण है, तो सबसे पहले तो मैं हिमांशु अग्रवाल को अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से और अपने प्रिय श्रोताओं की तरफ से भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने यूपी पीएससी का मेंस क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत बधाई हिमांशु, और हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कि आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई करें। हिमांशु अग्रवाल झांसी के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय एकेडमी और एकेडमी की टीम को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए हिमांशु। मित्रों, चार स्टूडेंट्स ने अपने नंबर भेजे हैं जो अक्टूबर की क्लासेस के लिए आ रहे हैं, और उनके एरिया से यदि कोई दूसरे स्टूडेंट भी आ रहे हो तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इन चार स्टूडेंट्स के नाम बताता हूं। पहले बागेश्वर यादव जो मऊ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मऊ और आजमगढ़ जिले से आने वाले स्टूडेंट्स उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बागेश्वर यादव का मोबाइल नंबर है 9582696761। दूसरे स्टूडेंट हैं शांतनु पुरोहित जो पिपरिया होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला है उसके पास में है पिपरिया, वहां से आ रहे हैं। शांतनु पुरोहित का नंबर है 9752661440। मैं रिपीट कर देता हूं 9752661440। तीसरे स्टूडेंट हैं विनय गर्ग जो धनबाद झारखंड से आ रहे हैं, इनका मोबाइल नंबर है विनय गर्ग का 8271969228। और चौथे और अंतिम फ्रेंड स्टूडेंट हैं अर्जुन सूर्यवंशम जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर है 7786947767। मित्रों, इसके बाद कुछ स्टूडेंट ने आईएएस की जो मेरे आप आईएएस कैसे बनेंगे कि अंग्रेजी अनुवाद के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो अंग्रेजी की किताब फ्रेंड्स अभी ये आई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि दो महीने में ये किताब आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जानना चाहे अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए, तो मैं यही कह सकता हूं कि जो afeis.com के जो वेबसाइट है वहां आप चले जाएं, वहां बकायदे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया बहुत डिटेल में बताई हुई है, आपको जानने को मिल जाएगी। तो मित्रों, अब मैं उन दोस्तों के नाम के साथ ही उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं, लेकिन मैं उनका नाम इसमें शामिल नहीं कर पा रहा हूं। इनमें से कुछ नाम हैं, वो हैं भरत गुप्ता, पवन है घाटशिला से, तनुप्रिया सिंह दिल्ली से, रजत कुमार बोलपुर से, सागर थूबे, गौरव साहू, विनेश विक्रम सिंह सोढ़ा जोधपुर से, जिन्होंने अपने एक उन्होंने जो अपने अंदर अभी तक परिवर्तन जो लाए परिवर्तन जो उनके व्यक्तित्व में आया उसके बारे में उन्होंने अपना अनुभव भी लिखा है, विक्रम सिंह सोढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम। इसके बाद इसके लिए सुधीर गुप्ता दिल्ली से हैं, स्नेहा मकाड़िया, तुषार अब भी दिल्ली से हैं, मनमत दीक्षित डूंगरपुर राजस्थान से हैं, संगीता जी दास, शालिनी लखनऊ से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इस वायदे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।